ओम ज्ञानतिमिरांध ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येना तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वृंदाय तुलसीदेव्याय प्रियाय केशवश्च च कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवते नमो नमः। तो प्रभुपाद ने कौन सी ऐसी चीज है जो हमें नहीं दी है? धाम के किसी भी कोने में चले जाओ, कोई भी जो भक्ति का अंग है वो श्रील प्रभुपाद ने मॉर्निंग प्रोग्राम में दे डाला है। इसलिए मैं कुछ साल पहले मायापुर में था, 2-4-5 महीने के लिए, तो वहाँ एक सन्यासी है थे हनुमत प्रेषक स्वामी, इस्कॉन के एक महाराज हैं। उनको देखोगे वो 1:30 बजे उठ जाते थे, फिर हम उनके पीछे 2 बजे उठ के फिर चले जाते थे मंदिर में चांटिंग वगैरह के लिए। तो उनकी खासियत क्या थी, हमेशा एक बुक हाथ में रखते थे वो, उसका नाम क्या है, उपदेश अमृत। कौन सा बुक? चाहे जहाँ मर्जी वो चले जाए, जैसे हम जपमाला रखते हैं ना, वैसे अपने साथ वो रूप गोस्वामी का उपदेश अमृत रखते हैं। और वो उपदेश वास्तव में सारे उपदेशों का सार है। एक प्रकार से देखा जाए गोस्वामी उनकी जो भी शिक्षाएं हैं उसको नट शेल मतलब बहुत कंप्रेस किया है संक्षिप्त में, तो वो वास्तव में उपदेश अमृत है। और वो बिल्कुल नीचे से लेकर आपको जो ब्रज की पूर्णतम अवस्था है वहाँ तक पहुँचाने में सक्षम है, ऐसा अद्भुत वो ग्रंथ है उपदेश अमृत। तो उपदेश अमृत का वो बहुत प्रेमी है, तो उपदेश अमृत कहता है कि सारे उपदेशों का सार क्या है, अखिल उपदेश सारम, कि 24 घंटे व्यक्ति को कृष्ण के नाम रूप गुण लीला में क्या होना चाहिए, निमग्न होना चाहिए। और यही जीवन की सर्व सिद्धि है, यही पूर्णता है जीवन की, कि हमारा मन हमारा हृदय चित्त आदि भगवान के नाम रूप गुण लीला और उनका धाम, पांचवी चीज क्या है, धाम, इसमें निमग्न रहना चाहिए। तो ऐसे जो महाराज कई सालों से प्रैक्टिस कर रहे भगवत भक्ति, तो हम लगभग 40-45 साल हो गए, उनको पूछा रोज जो क्लास लेते थे, तो महाराज आपको क्या लगता है कि क्या सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे लिए, तो उन्होंने बहुत एक ही लाइन में कहा 4 to 9। क्या?
4 to 9।
तो उन्होंने कहा और कुछ नहीं जानता मैं, एक ही चीज सबसे इम्पोर्टेंट है, चाहे वो कौनते ही धरातल का भक्त क्यों ना हो, चाहे वो नया भक्त हो या अपने आप को जो परमहंस समझता है, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, 4 to 9। ये 4 to 9 ऐसी वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन है ना सबके पास होती है, कपड़े डालो घूमती रहते कपड़े, फिर सब ड्राई होके साफ होके बाहर आ जाते हैं, वैसे ऐसी वॉशिंग मशीन है। सुबह सुबह चले जाओ उसमें, 4 बजे मंदिर पहुंच जाओ और 9 बजे क्या हो जाओ, बाहर आ जाओ, सोना नहीं है। 9 मीन्स मॉर्निंग का 9, रात का 9 नहीं। तो प्रभुपाद बहुत जोर देते थे, प्रभुपाद कहते थे कि कौन सा मंदिर कितना स्पिरिचुअली स्ट्रांग है वो यदि आपको चेक करना है तो कौन से समय चले जाना, 4 to 9। उस समय डिवोटीज है और तब समझना का इस मंदिर का माहौल क्या है, वाइब्रेंट है, लाइफ है इस मंदिर में, अन्यथा जहाँ ये 4 to 9 नहीं है उस मंदिर में लाइफ नहीं है। लाइफ बड़े बड़े बिल्डिंग से नहीं आता, वो आता है आध्यात्मिक कार्यकलापों से जब भक्त करते हैं। तो ऐसे प्रभुपाद ने सुबह सुबह ही हमें इतना महत्वपूर्ण अंग दिया है, किसकी सेवा का, तुलसी की सेवा का, सोचो। और वो क्या देती, हम रोज गाते हैं, वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशो, केशो को प्रिय है, हाँ कृष्ण भक्ति प्रदे देवी, कृष्ण भक्ति देने वाली है। कभी कभी हम कुछ शॉर्टकट ढूंढते हैं कृष्ण प्राप्ति का, ये कृष्ण भक्ति जो दी है प्रोसेस प्रभुपाद ने अपने आप में सबसे शॉर्टकट सरल और सुगम में है, तो और कुछ ढूंढने का प्रयास नहीं करना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद ने इतना अद्भुत व्यवस्था दिया है, और वो भी एक कोई कहता है कि मुझे तो भक्तों का संग नहीं है, कई बार कहते ना कि मैं जब अकेले करना पड़ता है, भक्तों का संग नहीं है। वास्तव में हम नहीं जानते हैं प्रभुपाद ने हमारे लिए एक शुद्ध भक्त अपॉइंट किया है, और वो शुद्ध भक्त कौन है? तुलसी महारानी। फिर भी हम रोते रहते हैं, जो इतना हमें सब कुछ चीजें अवेलेबल की हैं, लेकिन हम क्या है उसकी ग्रेटनेस महानता से अवगत नहीं है, उसकी महिमा से अवगत नहीं है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि ऐसे महान भक्त का संग हमें प्रभुपाद ने दिया है। तो प्रभुपाद कहते थे जपा की क्वालिटी और जपा के नाम के प्रति आसक्ति बढ़ानी है तो तुलसी के नजदीक क्या करना चाहिए व्यक्ति को? सदैव नाम करना चाहिए। उदाहरण देखो हरिदास ठाकुर, हरिदास ठाकुर जहां भी जब हरि नाम लेते थे वो तुलसी के निकट बैठकर हरि नाम लेते थे, क्योंकि तुलसी में तो कई सारे लाभ है। एक पहला क्या है, भगवान का वृक्षा अर्चा अवतार है, कई सारे अवतार है ना भगवान के, तो भगवान इसलिए कहते कि भगवान कलियुगा में चार रूपों में अवतरित होते हैं, एक है गंगा, दूसरा है भागवत, तीसरा है कृष्णा के डिवोटीज, और चौथा है तुलसी। तो ये भक्ति सिद्धांत महाराज ये वर्ड यूज करते थे वृक्षा अर्चा अवतार, तुलसी के बारे में जब वो बोलते हैं। तो ऐसा ये वृक्षा अर्चा अवतार एक दृष्टि से शास्त्र कहते हैं कृष्ण से अभिन्न है। हाँ, जैसे गुरु साक्षात हरित्वे न समस्त शास्त्र, हाँ साक्षात हरि है वो, लेकिन हरि के प्रिय है, तो वैसे ही तुलसी है। दूसरा कि तुलसी भगवान की शुद्ध भक्त है, तो हमें एक तो भगवान के शुद्ध भक्त का संग लाभ हो रहा है, और तीसरा तुलसी के गमले की जो मिट्टी है वो ब्रज रस से अभिन्न है, शास्त्र कहते हैं जो ब्रज धूली हम ब्रज में आके ढूंढते रहते हैं ना, सर में लगाते हैं, तो ब्रज रज कहाँ अवेलेबल है आपको? वृंदा देवी के जड़ में जो, हाँ वो साक्षात ब्रज रज है। तो अब सोचो कितना सारा लाभ है, मतलब होता है ना ऑफर, बम्पर ऑफर होता है दिवाली का या सेल, तो वैसे इतना मतलब कृपा की असीम मूर्ति है जो वृंदा देवी तुलसी है। तो लेकिन हमारा दुर्भाग्य क्या है, जैसे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं भगवान आपका नाम और आप अभिन्न हो, आपके नामों में सारी शक्ति है, लेकिन मैं इतना दुर्भाग्यशाली हो कि मुझ में उसके प्रति कोई अनुराग, तत्रापि न अनुराग, उसमें कोई अनुराग नहीं आपके नाम लेने में। वैसे ही तुलसी के प्रति हमारा कोई अनुराग नहीं है, तुलसी को तो हम ऐसे ही चलो, लेकिन देखो तुलसी नहीं है तो हम भूखे मर जाएंगे भक्त, हाँ ऑफर नहीं कर सकते, तो हम तुलसी इसलिए रखते कि ऑफर करना पड़ता है, कई बार हमारी ये भावना होती है, हाँ तुलसी इसलिए रखते कि वो भोग के लिए लगती है, लेकिन भक्ति के लिए नहीं चाहिए हमें, अपने शुद्ध भक्ति की बढ़ोतरी करने के लिए तुलसी नहीं चाहिए। तो जिस भावना से अप्रोच करोगे तुलसी को, उसी भावना का जो लाभ है आपको प्राप्त होगा। इसलिए ये तुलसी महारानी, तुलसी देवी भगवान को अत्यधिक प्रिय है। कभी कभी ये सारी गोपियां बहुत ईर्ष्या करती है तुलसी से, और ये लक्ष्मी देवी बहुत ईर्ष्या करती है। हाँ क्यों ईर्ष्या करती है? लक्ष्मी देवी तो पाद सेवनम, उसका अंग है ना, भगवान के चरणों में लगी रहते, लेकिन कभी कभी लक्ष्मी के भक्त उसको बुलाते वो वहां भी चले जाते हैं। गुरुवार को कब जाते हैं? गुरुवार मंगलवार होता है ना तो लक्ष्मी का वार, वहां चले जाते हैं। लेकिन तुलसी ऐसी है वो भगवान के चरण कमल कभी छोड़ती नहीं है, आज तक कभी नहीं छोड़ा, और वो इतनी पावरफुल है कि उसको उसका दर्शन करने मात्र से व्यक्ति भक्त बन जाता है, उसका स्पर्श करने मात्र से, उसका सूंघने मात्र से। जो चार कुमार थे वो कैसे भक्त बने थे? ब्रह्मा के मानस पुत्र तुलसी की जो भगवान, जब ये चार कुमार बालक छोटे बच्चे वैकुंठ के लिए जा रहे थे तो दरवाजे में वो जय विजय से कुछ लड़ाई हो गई, तो भगवान आ गए, बाहर आते ही सबसे पहली चीज आगे आ गई क्या? तुलसी की सुगंध। वो सुगंध लेने मात्र से ये चार कुमार डिवोटी बन गए, सरेंडर हो गए। हाँ तो इस प्रकार से इतनी सामर्थ्यवान है ये जो तुलसी है, तो इस प्रकार से उसमें वो शक्ति है जो किसी भी व्यक्ति को भक्त बना सकती है और भक्ति दे सकती है, लेकिन हमें उसको उचित रूप से अप्रोच करना चाहिए। इसलिए हमें कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि मेरे पास संग नहीं है। हमारे पास चांटिंग करते समय तुलसी का एसोसिएशन है, और उस जहाँ तुलसी है वहाँ क्या है, वृंदावन है। जय स्थाने वैष्णव गण सही स्थान वृंदावन। भक्ति विनोद ठाकुर एक गीत में कहते हैं, वृंदावन ढूंढते हम, कहाँ है वृंदावन, कहाँ वृंदावन। जहाँ भगवान के भक्त है वो स्थान क्या है, वृंदावन है, वो धाम है। भगवान को इतनी प्रिय है तुलसी कि भगवान ने अपने धाम का नाम ही उसके नाम से रख दिया। क्या नाम रख दिया, वृंदावन। अब सोचो किसी का कोई यंग नया नया शादी होता है ना, फिर उनको कोई पति पत्नी होते हैं, उनको कोई मूवीज देखते हैं, उनको कोई हीरो हीरोइन अच्छे लगते हैं, तो कहते बेटा हो जाएगा तो उस हीरो का नाम रखेंगे, बेटी हो जाएगी तो उस हीरोइन का नाम, मतलब उनको जो प्रिय है उसका नाम रखते है ना। तो वैसे भगवान को कौन प्रिय है, तुलसी। तो भगवान कहते मैं जहाँ रहूंगा, कई बार लोग अपने घर का भी नाम रखते है ना कुछ, तो वैसे ही भगवान ने अपने धाम अपने घर का नाम क्या रख दिया है, वृंदावन। इतनी अधिक तुलसी देवी भगवान को प्रिय है, बल्कि जो लक्ष्मी या गोपिकाएं उनसे एक प्रकार से ईर्ष्या करती हैं। इसलिए भागवत में कहा गया है सारंगाराम पदाम्बुजम, कि भगवान के भक्तों का स्थान कहाँ है, चरणों में है। हाँ, दुर्योधन जाके कहाँ बैठा था, भगवान के सर के सर में बैठा था जाके, लेकिन अर्जुन कहाँ बैठे थे, चरणों में। तो तुलसी ये सेवा प्रदान करती है, सेवा अधिकार दिए करो निज दास। हम प्रार्थना करते हैं ना, कई सारी प्रार्थना करते, पहली प्रार्थना है विलास कुंज देव। विलास कुंज क्या है, वृंदावन का दूसरा नाम है, जहाँ आनंदमय कुंज है, कुंजों से बना जो ये वन है उसको वृंदावन कहते हैं। तो ऐसे हम प्रार्थना करते हैं कि हे वृंद देवी तुलसी, आप मुझे इस विलास कुंज वृंदावन में निवास करो, निवास ही नहीं बल्कि क्या दे दो मुझे, सेवा करने का अधिकार दो। और वो अधिकार हमें गुरु से प्राप्त होता है। कृष्ण की सेवा करने का अधिकार किससे प्राप्त होता है, गुरु से। जब हम उनसे यथोचित विधिवत दीक्षा प्राप्त करते हैं तब एक प्रकार से हम योग्य हो जाते हैं सेवा करने के लिए। तो उसी प्रकार से राधा कृष्ण की जो सेवा है वो वास्तव में वृंद देवी या तुलसी के माध्यम से हम प्राप्त करते हैं, इसलिए उनका स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए प्रभुपाद ने क्या किया, सुबह सुबह उठ के पहले ये दे दिया हमें, सबसे पहले गुरु की आराधना, वंदे गुरु श्री चरणारविंद, और फिर तुलसी महारानी की आराधना और उनकी सेवा पूजा करने की शिक्षा प्रदान की, बल्कि ये अंग बन गया है प्रतिदिन। तो इसलिए रोज व्यक्ति को बिना, प्रभुपाद एक जगह लिखते हैं कि व्यक्ति को तुलसी को जल दिए बिना दिन में सुबह कुछ मुंह में नहीं डालना चाहिए, कुछ नहीं खाना चाहिए, कम से कम क्या करना चाहिए, दिन में एक बार तुलसी को जल प्रदान करना चाहिए, वो अत्यधिक लाभप्रद है। तो ऐसी ये तुलसी दो रूपों में है, यहाँ ये वृंदा देवी, और वृंदा देवी ये उनका वृंदावन, गोलोक वृंदावन का सेवा का एक अंग है, भाग है। हाँ, गोलोक वृंदावन में वो अवतरित होती है वृंदा देवी के रूप में, और वैकुंठ स्वरूपा क्या है, तुलसी, तुलसी वृक्ष के रूप में वो वैकुंठ का उनका सेवा या रूप है। तो ये वृंदा देवी ये ब्रज की एक प्रकार से मैनेजर है, मैनेजर ही कहते शायद, मैनेज करती है सब कुछ। हाँ, कहा राधा कृष्ण लीलाएं करेंगे, क्या होगा, कौन से कलर्स होंगे, कौन से ट्रीज होंगे, स्टेज क्या होगा, इंस्ट्रूमेंट्स क्या बजेंगे, बैकग्राउंड म्यूजिक क्या चलेगा, वो सब कुछ जो अरेंजमेंट होता है, कौन भक्त भाग लेगा, कौन सी गोपिकाएं होगी, कौन से सखागण होंगे, क्या इस सब कुछ कौन अरेंज करता है, वृंदा देवी। हाँ, पूर्णमासी की आज्ञा से। हाँ, ये वृंदा कृपा है ले वृंदावन प्राप्ति है, वृंदा की कृपा से क्या होगा, वृंदावन की प्राप्ति होगी। तो इसलिए ये जो वृंदा देवी है वो राधा कृष्ण की बहुत निगूढ़ प्रमुख सेवा करती है, और यहाँ ये उनका निवास स्थान है, और उनके पास हजारों हजारों मैसेंजर है। ये सारे जो तोते हैं वो उनके उनके हाथ में देखा ना, वो बैठे हुए थे, तोता भी है, वो सारे उनके सेवक है, मैसेंजर भेजती है, जाओ ब्रज के वनों में, कहा हमने कुछ नया राधा कृष्ण का लीला के लिए अरेंजमेंट करना है, सारे संदेश वो लेके आते हैं और फिर ये अरेंजमेंट करती है। तो ये गुप्त कुंड है यहाँ, ये जो पीछे है, तो यहाँ योगपीठ कहते हैं ना, वृंदावन में तीन स्थानों में राधा कृष्ण हम मिलते हैं। एक तो है गोविंद देव टेम्पल है जो रूप गोस्वामी का वहां, और दूसरा है मध्यान्ह में राधा कुंड, और ये एक है गुप्त कुंड, ये जो वृंदा कुंड का, तो इसलिए ये जो स्थान है बहुत महत्वपूर्ण है वैष्णवों के लिए या डिवोटीज के लिए, और अधिकतर डिवोटीज आते हैं यहाँ और इसका आश्रय लेते हैं वृंदा देवी का। पहले जो माधव बाबा जी रहा करते थे शायद वो सेवा किया करते थे, फिर उन्होंने दीन बंधु प्रभु या इस्कॉन को प्रदान किया और फिर इस्कॉन ने ये डेवलप किया है इतना सुंदर और विशेष मंदिर। तो यहाँ आके हमें उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि मुझे बल दो ताकि मैं कृष्ण की या गुरु की सेवा में गंभीरता से लग सको। तो ऐसे तुलसी की सेवा रोज घर में करने का प्रयास करना चाहिए, है ना। केवल ये नहीं कि भोग तोड़ने के लिए सीमित नहीं, बल्कि जहाँ तुलसी, प्रभुपाद की एक शिष्या थी, पहले विदेशों में तुलसी नहीं थे, गोविंद दासी वो पहली ऐसी शिष्या है जिसने विदेशों में तुलसी का वृक्ष उगाया और सारे मंदिरों में भेजा, तो प्रभुपाद बहुत खुश हो गए। हवाई में रहा करते थे उनके पति गौर सुंदर के साथ, तो प्रभुपाद स्पेशली गए उनके पास, क्या तुमने तुलसी को उगाया है, और बाद में तुलसी इतना बड़ा हो गया, इस पेड़ से भी बड़ा हो गया और पूरा ऐसा सब जगह ऐसा फैला था। प्रभुपाद को बहुत आनंद आता था, कहते जहां भी तुलसी ऐसी फल फूल रही है उसका मतलब है वहां भक्ति क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो वो जैसे बुखार को नापने के लिए थर्मामीटर यूज करते, क्या करते, थर्मामीटर, तो वैसे ही है भक्ति को नापने के लिए, क्या तुलसी की क्या अवस्था है आपके घर में। कई बार तो तुलसी में पूरे वो जाले लग जाते हैं और बहुत वो मंजरिया ऐसी ऐसी हो जाती है, पूरे सूख जाते, मंजरी बड़ी हो जाए काटे हम उनको, हरा भरा फ्रेश रहे, रोज जल डाले उनको प्रणाम करें और उनके लिए स्तुति गाए कीर्तन गाए कभी, क्योंकि वो सब पर्सन है, व्यक्ति है, हम व्यक्ति की तरह ट्रीट नहीं करते उसको, क्या एक, चलो एक पेड़ है कुछ काम करे, भौतिकतावादी उसको औषध चाय बनाने के लिए यूज करते हैं, तो वैसे ही है कि हमारी चेतना क्या है उसके प्रति, मनोभाव, तो वो हमें बदलना चाहिए और जानने का प्रयास करना चाहिए तुलसी के बारे में। इवन देखो अपने जीवन में हम कृष्ण को प्रकट करना चाहते हैं, नहीं कि हे भगवान एक दिन मेरे हृदय में प्रकट हो जाओ, है ना। लेकिन देखो अद्वैत आचार्य ने चैतन्य महाप्रभु को प्रकट कराया, कैसे प्रकट कराया, वो गौतमीय तंत्र पढ़ रहे थे वो ग्रंथ, उसमें उनको एक श्लोक मिला, तुलसी दल मात्रे न जलश चुलुके नवा विक्रणेते स्व आत्मानं भक्त्यो भय भक्त वत्सला। उन्होंने पढ़ा कि भगवान को तुलसी दल और थोड़ा सा जल देने से वो अपने आप को उस व्यक्ति के हो जाते जो दे देता है। तो अद्वैत आचार्य ने शांतिपुर में भगवान की आराधना की शालिग्राम की, रोज तुलसी दल और थोड़ा जल, जिससे भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में उनको अवतरित होना पड़ा, बंद गए भगवान। तुलसी देने मात्र से भगवान बंद जाते हैं, इसलिए भगवान ने बोला ना मुझे क्या अर्पण करो, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पान फूल जल हाँ ये सब मुझे अर्पित करो, तो बेस्ट है। हमारे पास कुछ नहीं है तो रोज एक पत्र भगवान को अर्पित करो, भगवान के चरणों में सबसे बड़ी ये है भेंट है, कृष्ण कभी भूलते नहीं है। जैसे मैंने वो सत्यभामा का बोला था बीच में, तो भगवान जब नारद मुनि जब स्वर्ग से आए तो वहां से एक फूल लेके आए थे, कौन सा फूल लाए थे, पारिजात। तो पारिजात लाए थे द्वारका में, कृष्ण रुक्मिणी के साथ बैठे थे और वो जाकर कहा कि भगवान को दिया, भगवान आपके लिए फ्लावर है, इंद्र के गार्डन से लाया हूं, नंदन कानन से, पारिजात कभी सूखता नहीं है, आप सबसे जिनसे प्रेम करते हो आपके सबसे जो प्रिया है उनको दे दीजिए। अभी रुक्मिणी बैठी है, भगवान थोड़ी बोल सकते हैं और भी दूसरी मेरी प्रिया है, जो नजदीक है उसी भगवान को बोलना पड़ा कि ये मेरी प्रिया है इसको ही देता हूँ। तो रुक्मिणी को फूल दिया, तब तक नारद गए सत्यभामा के पास, कहते आपने सुना नहीं क्या हो गया वहां, वो नारद मुनि नहीं है तो कृष्ण लीला में आनंद नहीं है। जैसे सब्जी बनाते हो मसाला नहीं डालोगे तो टेस्ट नहीं आएगा, तो नारद मुनि का काम क्या है, कृष्ण लीला में मसाला छिड़कना जिससे और आनंद बढ़ता है। तो ऐसे नारद मुनि गए सत्यभामा को, कहते हैं कि वो तो देखो उनको फूल दिया आपको तो कुछ नहीं हो, तो कहते नहीं मैं अभी उनको अपना करना चाहती हूँ, नारद बताओ क्या करूँ। तो नारद जो उनको बोलते हैं कुछ एक कार्य बोलते हैं वो करती हैं, तो भगवान आते हैं और भगवान से वो मांगती है, तो भगवान को वो कहती है कि मुझे फूल नहीं चाहिए, क्या चाहिए मुझे, पूरा पेड़ ही चाहिए। तो भगवान को पेड़ लाने के लिए वो गरुड़ के ऊपर बैठ के गए थे, वो पेड़ लेके आ गए, तो नारद वापस जब आए कुछ महीनों के बाद तो देखा कि इसकी तो इच्छा पूर्ति हो गई है और भगवान उसके हो गए, अभी वश में आ गए हैं। और फूल क्या पूरा पेड़ भगवान ने उसके लिए ला दिया। तो नारद कहते अभी मुझे दक्षिणा चाहिए, आपको जो सबसे प्रिय है वो मुझे दक्षिणा में दे दो। अभी सत्य भामा के सबसे प्रिय कौन है? कृष्णा। वो कहते ये है मेरे सबसे प्रिय। नारद ने हाथ पकड़ा और लेके जा रहे थे कृष्ण को। तो बाकी और रानियां भी बोले कि देखो आपके प्रिय वो आपका धन नहीं है, हमारे भी है। तो नारद कहते मैं वापस तो नहीं दे सकता, लेकिन दे दूंगा, लेकिन उसके बदले में मुझे उतना धन चाहिए। तो क्या करते, तराजू में बिठा देते हैं, एक और कृष्ण को बिठाते हैं। फिर सारी रानियां क्या करती है, सारे अपने आभूषण और धन डालती है उसमें, लेकिन कृष्ण का कृष्ण वैसे रहते नीचे, ऊपर नहीं हो रहे थे। हाँ, तो फिर एक रानी चली जाती है रुक्मिणी के पास। तो रुक्मिणी उस समय तुलसी की पूजा कर रही थी और तुलसी की परिक्रमा और आराधना कर रही थी। तो किसने कहा कि आप आओ वहां, सारा आपका आभूषण वगैरह सब डालो, वो कृष्ण को लेके जा रहे हैं नारद, तो मुश्किल होगा। तो उस समय क्या हुआ कि रुक्मिणी देवी ने क्या किया, तुलसी का एक पत्र लिया प्रणाम आदि करके और आ गई, आई और कहा कि ये सब हटा दो, सोना कंगन वंगन जो भी अलंकार आभूषण हटा दो, और वहां वो पत्र डाल दिया। उसमें क्या लिखा था, उसने कृष्ण, क्या लिखा था, कृष्ण। तुलसी पत्र को डाल दिया और डालते ही क्या कि जैसे रखा वो कृष्ण सीधा ऐसे ऊपर हो गए, और नारद को क्या लेके जाना पड़ा, क्या, तुलसी पत्र। देखो नाम उसके ऊपर अंकित था, वैसे हम जप करते हैं ना तुलसी माला पर, बहुत पावरफुल है तुलसी माला पर जब चांट करते हैं। तो आप सोचो एक तुलसी पत्र से कृष्ण को खरीद लिया है ना, वापस ले लिया। इसलिए तुलसी हमें कृष्ण भक्ति दे सकती है, और भक्ति ही क्या है, कृष्ण को खरीदने का धन है। इसलिए वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत में लिखते हैं, भक्ति योग भक्ति योग भक्ति योग धन, भक्ति योग हय केवल स्मरण क्रंदन। तो भक्ति योग ही एकमात्र जीवन का धन है। और भक्ति योग है क्या, भगवान का स्मरण करना और रोते रहना, किसके लिए, कृष्ण के लिए, यही है भक्ति योग। इसलिए प्रभुपाद कहते हरे कृष्ण मंत्र का जप क्या है, जैसे छोटा बच्चा अपने माँ के लिए रोता है, वैसे भक्त का क्रंदन है। हरे नाम लेना मीन्स क्या करना, कृष्ण के लिए रोना। हाँ, तो इस प्रकार का ये जो भक्ति है ये तुलसी महारानी या वृंदा देवी हमें दे सकती है, और ये प्रभुपाद की विशेष देन है। इसलिए प्रभुपाद ने जो दिया है कोई उसका आकलन नहीं कर सकता कि क्या क्या दिया है प्रभुपाद ने और कितना दिया है, असीम दिया है ना। तो इसलिए हम ग्रेटफुल हैं प्रभुपाद के प्रति, कभी भी रोना अदा नहीं कर सकते। एक भक्त गया प्रभुपाद के पास, प्रभुपाद कैसे ऋण से मुक्त हो सकते हैं, प्रभुपाद कहते हैं गुरु के ऋण से कभी शिष्य मुक्त नहीं हो सकता, केवल वो प्रचार करे सेवा में लगा रहे वही उसके लिए काफी है। तो इस प्रकार से प्रभुपाद की ये बहुत बड़ी देन है। प्रभुपाद ने हम सब कहाँ कहाँ जन्मे लेकिन कहाँ स्थान दिया है, वृंदावन धाम में स्थान दे दिया है, आप सोचो। हाँ, तो इसलिए प्रभुपाद के सदैव ऋणी रहने चाहिए जीवन के अंत तक, और सदैव अपना जो नाम भजन है वो बढ़ाना चाहिए, और उसके लिए सहायक सुबह रोज तुलसी के आसपास हमें चांट करना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वृंद देवी तुलसी महारानी की, श्रील प्रभुपाद की, चिताय गौर प्रेमानंदे।